श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक संख्या 14 दिनांक 21 जुलाई 2015 स्वीकार हिज ग्रेस जन्माष्टमी प्रभु
तस्मै श्री गुरुवे नमः। बस बस लेट हूं मैं, सहायता कीजिए मेरी। बहुत सारे श्लोक बोलेंगे तो तात्पर्य मिस कर जाएंगे, फिर वो दम देता है मुझे, वहां बैठा है ना वो शर्ट पेंट वाला, ऐ घड़ी देख ज्यादा लंबा मत कर। तो दम देने वहां देखो कॉर्नर में बैठा है, इसलिए सहायता करिए मेरी प्लीज। तो ये जो पाठ चल रहा है गोवर्धन पूजा, और आज का जो श्लोक है ये हमें एक बहुत ही सुंदर एक शिक्षा प्रदान करता है, एक बहुत सुंदर उपदेश देता है। वो शिक्षा है, वो उपदेश है दिव्य हस्तक्षेप। दिव्य हस्तक्षेप, आध्यात्मिक हस्तक्षेप, ट्रांसेंडेंटल सुप्रीम इंटरफियरेंस। जब हम सब भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं और शयने शयने भक्ति मार्ग में उस पथ पर अग्रसर होते हैं, और जब हम ये समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ये मन मर्जी से इंद्रिय तृप्ति हमें बहुबंधन में बांध के जकड़ के रखता है, हमें मन और इंद्रियों को वश में करके पूर्णतया भगवान के चरण कमलों में लगाकर भगवत धाम जाना, वापस जाना है, जो यहां पर तात्पर्य में लिखा है। तो ये सब हम जान गए हैं, जानते हैं, पर मानते नहीं है। सच है ना, जान तो गए हैं पर मानते नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी समझो कोई बढ़िया प्रसाद हो तो उसमें यदि कोई मुझे 2 रसगुल्ला देगा तो मन में ये इच्छा आएगी कि कोई अगर प्रेम से पूछे तो 4-5 और ठूंस लो। आकंठ प्रसाद के सामने तुरंत शर्त रखी गई है उद्दंड कीर्तन, अर्थात इतना परिश्रम, इतनी सेवा। उद्दंड कीर्तन का अर्थ एक ही नहीं है कि उद्दंड कीर्तन मतलब दुर्दाम दुर्दाम, ये भी है, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, या भागवत प्रचार भी है, या जप भी है, या मंदिर को झाड़ू बुहारना भी है, अर्थात इतना परिश्रम है भगवत सेवा में, इतनी उत्कंठा से और इतनी तत्परता से इतनी सेवा करनी है कि वो प्रसाद सहज परिश्रम के द्वारा पचन हो जाए। और यदि भगवत सेवा में वो प्रसाद पचन नहीं होगा तो वो प्रसाद का जो असर है वो हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर खींच के ले जाए। हम सबका ये अनुभव है, मेरा तो बहुत अधिक है, मेरा स्वयं, तो यह हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाएगा। तब हम क्या करते हैं, हे भगवान कृपा करो, कृपा करो, मेरे वश में मेरा मन नहीं है, इंद्रियां मेरे वश में नहीं है, भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो, आप क्यों मुझ पर कृपा नहीं करते हैं, क्यों मेरा मन और इंद्रिय वश में नहीं है। ऐसा कोई भक्त या माता ऐसी बैठी है यहां जिसने ये हजारों बार ये प्रार्थना नहीं की हो, है ना मनमाली प्रभु, ऐसा कोई है जो हम में से किसी ने नहीं किया हो? क्योंकि हम जान गए हैं पर मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि भगवद गीता में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यही प्रॉब्लम कहते, यही सवाल पूछते हैं कि भगवान मेरा मन और इंद्रिय वश में नहीं हो रहा है, आप प्लीज कृपा करो, मैं क्या करूं, मैं अपने बाणों से बड़े बड़े चट्टानों को भेद सकता हूं, समुद्र की लहरों को रोक सकता हूं या उसमें तूफान उठा सकता हूं, आंधी तूफान को अपने बाणों से रोक सकता हूं पर मन को नहीं रोक सकता, क्या करूं? भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसान अन्यगामिना पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे एवरी टाइम, हमेशा अभ्यास करो, हमेशा हमेशा अभ्यास करो कि अभ्यास योग युक्तेन। तो क्या अभ्यास करना है? चेतसा न अन्य गामिना, हमारी चेतना अन्य कहीं और गमन न कर जाए, श्री कृष्ण के चरण कमलों के अलावा हमारा मन कहीं अन्य गमन न कर जाए। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्य गामिना। लेकिन ऐसी कोई चीज थोड़ी है जो पकड़ के वहां रख ले, कोई ऐसी चीज है जो मन को पकड़ के रख ले, नहीं, उसे मोड़ सकते हैं। कहां पर? पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, जो मैं ऐसा दिव्य शाश्वत पुरुष हूं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, तो मैं जो ऐसा दिव्य शाश्वत पुरुष हूं, मेरे उसमें आप मन लगाइए, याति पार्थ अनुचिंतयन। फिर भी हम भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान ये ऐसी इंद्रिय तृप्ति के विचार आप आने ही क्यों देते हैं? करते हैं कि नहीं? मैं नहीं चाहता हूं इंद्रिय तृप्ति करना, पर आप क्यों नहीं कुछ जादू करते हो? आपके हाथ में कोई ऐसी लखुटी है या बंसी ऐसी बजाओ जैसे गोपियों का मन हर लिया, तो मेरा मन क्यों नहीं हरते हो? या कई बार हमें थोड़े कम श्रद्धालु या थोड़े कम धार्मिक लोग भी ये कहते हैं, ठीक है अगर आप इतना कहते हो तो भगवान है, यदि भगवान है तो संसार में इतना पाप क्यों हो रहा है, संसार में इतना पाप क्यों हो रहा है, भगवान क्यों नहीं रोक लेते? यदि हम कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो भगवान इतने सारे पाप को होने क्यों देते हैं? अगर पाप भगवान ही रोक ले तो ये सब धर्म की, धर्म गुरुओं की, धर्म प्रणालियों की, धार्मिक विधि विधानों की, व्रतों की, उपवासों की, तपस्याओं की, जप की, यज्ञ की, दान की कोई आवश्यकता ही नहीं, तो भगवान क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं? क्यों भगवान ये सब पाप होने देते हैं? हम भी शिकायत करते हैं, आखिर भगवान ऐसी क्या बात है, मैं इतने साल से दीक्षित हूं, हरे कृष्ण जप कर रहा हूं, क्यों मुझसे मन वश में नहीं होता, क्यों मुझसे पाप हो जाता है? करते हैं कि नहीं शिकायत? इसका मतलब हम पाप करते हैं, इसका अर्थ है हमारी इंद्रिय तृप्ति हम करते हैं, और फिर झगड़ा करते हैं भगवान से। यह अच्छी बात, यह झगड़ा अच्छी बात है कि हम भगवान से बारंबार कहें, निवेदन करें कि हमारे मन को वश में कराइए, क्योंकि जीव कितना ही दान कर ले, यज्ञ कर ले, तपस्या कर ले, जप कर ले, व्रत कर ले, तीर्थ कर ले, जीव में अपने आप में उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो 100% शुद्ध हो जाए या अपने पापों का निवारण कर ले अपनी क्षमता से, अपने बल से। जीव में वो क्षमता ही नहीं है कि वो अपने आप में ये कर सके, पूरा पूरा साफ हो सके, मलिन कर सके, चेतो दर्पण मार्जनम, ये अपने आप से पूरा स्वयं कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता कि जीव अपने आप में करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का यह शिक्षाष्टकम उसी श्लोक पे समाप्त हो जाता, पहले श्लोक पर ही, कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वाण। पर नहीं, उनको पता है, इसलिए दूसरे श्लोक की रचना की, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। फिर भी वापस हमारी ही शिकायत, दुर्दैवम इदृशम इह जानी न अनुराग। फिर भी तो अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। एक, ये नाम में समस्त शक्ति एवं ऐश्वर्य है, उतनी समस्त शक्ति और ऐश्वर्य जितनी समस्त शक्ति ऐश्वर्य गिरधारी में है, तो गिरधारी के नाम में भी उतनी समस्त शक्ति और ऐश्वर्य है। अच्छा, इस नाम को लेने का कोई विधि विधान नहीं बताया कि सिर्फ मंगलवार को लेना है, लाल आसन पे ही बैठना है, पूरब की ओर मुख रखना है, पहले प्राणायाम करना है, और ये मंत्र करने के बाद गौ ब्राह्मणों को दान करना है, ऐसा कोई विधि नहीं है। तो नाम नाम, वो नाम जो है अकारी है, उसमें कोई विकार नहीं है। नाम नाम अकारी बहुधा बहुधा समस्त, जितनी समस्त भगवान में है, बहुधा निज सर्वशक्तिश। और तीसरी कृपा यह कि उसको लेने का कोई नीति नियम या समय नहीं पाबंद किया। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः, इतनी कृपा करने के बावजूद भी भगवान हमें आपके नाम के प्रति अनुराग नहीं हुआ। चैतन्य महाप्रभु हमारी ही शिकायत करते हैं गिरधारी के चरणों में, क्यों नहीं करते हैं? तो यहां पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान किसी भी जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। किसी भी जीव की स्वतंत्रता, जिसके मन में जो आए करो, आप स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरे अंश हैं। तो जो समस्त गुण भगवान में हैं, वो समस्त सारे गुण भगवान के अंश में हैं। भगवान अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। गुणों की मात्रा में, गुणों की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कितना बड़ा अंतर है? जमीन आसमान का। क्योंकि हम अणु हैं, भगवान विभु हैं, भगवान अनंत हैं, विश्वव्यापी हैं, और हम एक चित्कण हैं, अणु, है ना। भगवत गीता में भी आत्मा के स्वरूप को बताया ना, अणुरोयम चित्कण, ऐसे सब शब्द आते हैं ना भगवत गीता में, जब आत्मा की व्याख्या आती है। तो हम चित्कण हैं और भगवान विभु हैं, परंतु गुणों की गुणवत्ता में हम एक समान हैं। गुणों की गुणवत्ता में एक समान है, अर्थात जो सारे गुण भगवान में है, वो सारे गुण हम में भी हैं। इसलिए भगवान परम स्वतंत्र हैं, हम आंशिक स्वतंत्र हैं, और उस आंशिक स्वतंत्रता को लेकर हम सारे विश्व का राजा बनना चाहते हैं। आई एम द किंग ऑफ होल यूनिवर्स अराउंड द ग्लोब, माय रेगुलेशन एंड माय रूल इज एस्टैब्लिशिंग, आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश माय रूल, पूरी पृथ्वी का सम्राट बनना चाहता हूं मैं, है ना। इसीलिए यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्र महस्व कर्मा बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। एक शूद्र कीट से अमीबाज, अमीबा और बैक्टीरिया से लेके इंद्र तक, सभी को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्र महस्व कर्मा बंधान रूप फल भाजन मातनो। तो भगवान किसी के हस्तक्षेप नहीं करते। तो उस जीवात्मा की अवस्था क्या होती है? नास्तिक हो सकता है, धर्म में या भगवान को मानता ही नहीं है, या फिर थोड़ा सा आस्तिक या धार्मिक भी हो सकता है। परंतु आस्तिक और धार्मिकता के साथ वो भोग भी करना चाहता है, वो भोग भी करना चाहता है। तो उसके लिए सब विविध सुविधाएं भगवान ने इस ब्रह्मांड में बना के रखी है। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, है ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, हाँ, अनन्य देवता प्रपद्यन्ते, अनन्य देवता मायया अपहत ज्ञानम आसुरिम भावमाश्रिता। कि जो बहुत सारे प्रचुर भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, तो प्रपद्यन्ते अनन्य देवता। अब कभी शैव लोगों को देखा है, शिव के भक्तों को ऐसे बड़ा लाल टीका करेंगे और तीन बटन खुला रखेंगे और बड़ी बड़ी रुद्राक्षों की माला दिखाएंगे, मैं शिव का भक्त हूं, मैं शाक्त हूं, मैं देवी का भक्त हूं, मैं गणपति हूं, मैं गणपति का भक्त हूं, मैं सौर हूं, सौर ब्राह्मण हूं, सूर्य उपासक हूं। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम प्रपद्यन्ते अनन्य देवता, वो कभी भी देवताओं की शरण में रहता है और बड़ा स्टम तम नियम आस्थाय, हाँ, और उनके जो भी कड़क कठोर नियम होंगे वो बड़ी कठोरता से पालन करेंगे। तम तम नियम आस्थाय, उसकी आस्था और स्वभाव के अनुसार, प्रकृतिया नियता स्वया, अपनी रजोगुण तमोगुण या सात्विक प्रकृति के अनुसार वो उन कठोर नियमों को पालन करता है। चेतसा प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया, अपने गुणों के अनुसार वो करते हैं। तो इस प्रकार से अच्छे बुरे कर्मों के फलों के लिए वो इंद्र पूजा करते हैं। तो भगवान वहां पर ये उपदेश देते हैं श्री कृष्ण बाल कन्हैया, कहते हैं ये तो आपका जो सकाम कर्म नहीं करोगे, और जब तक वो सकाम कर्म फल पूरा नहीं होगा तब तक वो आपको फल नहीं देंगे, अर्थात वो आपके सकाम कर्मों पर आश्रित है, जो यहां तात्पर्य में लिखा है। तो आप सकाम कर्म करोगे तो आपको सकाम फल देंगे, आप सकाम कर्म फल नहीं करोगे तो वो सकाम फल नहीं देंगे, और वो भी उनकी शर्त है कि ये पूरा करो। जब तक आप वो सकाम कर्म फल पूरा नहीं करोगे तब तक आपको फल नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है देवी देवताओं के किस्से में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छय नमः, ऐसा उसको प्रण लेना पड़ता है कि मैं 1,00,000 बार बोलूंगा या 1,108 बार बोलूंगा, ऐसा प्रण लेना पड़ता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के लिए ऐसा नहीं है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः, कोई अंतर नहीं है, कोई नियम नहीं है। और इसलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि स्वल्प्यम अप्यस्य धर्मस्य नेहाभिक्रमणा शो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते निहतो भयात्। कि यदि आपने थोड़े से ही एक अल्पमात्र धर्म का भी पालन किया है, एक थोड़ा सा, तो वो आपके जीवन के सबसे महान भय से आपको बचा लेगा। नेहा भिक्रमणा शो अस्ति, इस मार्ग में कोई घाटा नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, कोई मुसीबत नहीं है, कोई घाटा नहीं है, इसमें केवल लाभ ही लाभ है। किस मार्ग में? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, भागवत धर्म के पालन में अगर आपने थोड़ा सा भी किया है, केवल जीवन में एक बार हरे कृष्ण बोला है या हरे कृष्ण सुना है, केवल एक बार हरे कृष्ण, पूरा मंत्र भी नहीं, तो बोले उतने मात्र धर्म से, उतने अल्प धर्म से भी आपके जीवन के महान भय से आपका बचाव हो सकता है। स्वल्प्यम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? सबसे बड़ा भय किसका? मृत्यु। और मृत्यु से भी बड़ा भय, अगर जिसको थोड़ा सोच समझ है और थोड़ा बुद्धि है, तो मृत्यु से भी ज्यादा भयावह भय वो है पुनर्जन्म। कहीं सूकर कुकर बन गए तो और ज्यादा भयभीत कराने वाली बात है। कभी सोचना चाहिए एकांत में कि मैं अभी जो कर रहा हूं पब्लिक के सामने, भक्तों के सामने, तो तिलक कंठी माला और हरे कृष्ण, परंतु एकांत में क्या करता हूं? एक सृष्टि सेक्टर 2 में मेरा दोस्त था, बाद में वो बहुत सिंसियर गंभीर भक्त हो गया, बहुत अच्छा भक्त हुआ। और उसका भगवान राधा माधव के सामने चंडीगढ़ में राधा माधव को देखते देखते उसने देह त्यागा। तो जब वो नया नया था तो एक दिन मुझे बोल रहा था, देवकी सुत प्रभु, सृष्टि सेक्टर 2 में रहते थे, देवकी सुत प्रभु ऐसे ही कुछ नाम था, तो बोलते थे प्रभु जी हम लोग बच्चों के साथ में पानीपुरी खाने जाते हैं मीरा रोड की खाऊ गली में रात को 10 बजे के बाद। मैंने बोला क्यों? बोले हरे कृष्ण भक्त लोग सो जाते हैं 10 बजे तक, सुबह उनको मंगला उठना होता है, तो हम लोग जाते 10 बजे के बाद मीरा रोड की खाऊ गली में पानीपुरी खाने। ऐसे जब वो नया था, तो ऐसे हम अभी भी पुराने हैं, 30 साल 32 साल 40 साल पुराने, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा दूसरों से व्यवहार क्या है? गलती से किसी ने हिसाब में 10 रुपया ज्यादा दिया तो वापस देते हैं कि जेब में रख लेते हैं? नहीं नहीं, मैं राधा गिरधारी के गुल्लक में डालूंगा, वो तो मायावादी है, वो तो चोर है, वो तो पापी है, वो तो कर्मी है, उसका 10 रुपया मैं लेके राधा गिरधारी में। ऐसा चोरी करने से गिरधारी प्रसन्न नहीं होता, तू तेरा कर्म कर, उसका कर्म गिरधारी देखेंगे। नहीं नहीं, उसने 10 रुपया दिया ना, वो तो कर्मी है ना, वो तो पापी है, वो चोर है, तो मैं ये 10 रुपया राधा गिरधारी के गुल्लक में डाल दूंगा, उसकी लक्ष्मी, उसको पुण्य मिलेगा, उसका भगवान को पैसा जाएगा, तो तेरा देख, तू क्यों कर्म कर रहा है कि वो चोर का पैसा तूने रख लिया? ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तो हम लोग ये जो सकाम कर्म में लगे हैं, तो बहुत सारे नियम होते हैं, पेड़ पे उल्टा लटकना या उल्टे पांव मंदिर जाना, या ऐसे शरीर को, दक्षिण भारत में ऐसी प्रणाली है, मंदिर की परिक्रमा करते हैं ऐसे रोलिंग 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 ऐसे करके शरीर को ऐसे घुमा घुमा के परिक्रमा करते हैं, ऐसे प्रकृतिया नियता स्वयं। उससे व्यक्ति जब ऊपर उठता है तो श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्भ। जब उससे व्यक्ति ऊपर उठता है सकाम कर्मों से, देवी देवताओं के पूजन से, क्योंकि उसको ज्ञात होता है ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ। तो उसे वो बहुत जन्मों के बाद ज्ञान होता है कि सब कुछ वासुदेव श्री कृष्ण का है, सब भूमि गोपाल की। तो वो क्या करता है कि अभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, पूर्व स्वभाव के अनुसार, वो अभी इतना शुद्ध भक्त नहीं हुआ, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्तों, ऐसे जो भक्त हैं चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, पुण्यवान से भी ऊपर उठे हैं सुकृतिनो अर्जुन, तो कैसे? आर्तो, बहुत दुखी है, चारों ओर से कोई कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, चारों ओर से दुखी दुख है, तो भगवान की शरण में आता है। कुछ दिन पहले एक बंगाली भक्त आया, 8-10 महीना हुआ उसको इस्कॉन हरे कृष्ण में आकर। वैसे वो फैशन फोटोग्राफर है, फैशन फोटोग्राफर। मैंने कहा तू तो यार बड़ी भयंकर माया के बीच में, फैशन फोटोग्राफर आज के जमाने में, ओहो। तो उसने कहा, और उसका जीवन ऐसे बर्बाद हुआ, पत्नी बच्चे चले गए, ये वो, इतना दुखी है। तो उसे भक्ति चारु स्वामी महाराज का एक शिष्य अमेरिका में मिला। उसने कहा फिर तुम मायापुर जाओ, फिर वो वाड़ा में गया, फिर शिनाजी धाम आया, फिर यहाँ वहाँ। अभी वो भक्ति को एकदम पकड़ लिया, और वो दोनों पति पत्नी लव मैरिज किया था, बंगाली और गुजराती लड़की से शादी किया, बच्ची 10 साल की, बाद में अभी बोले डाइवोर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है जीवन में भोग क्या है। तो वो अब वो हरे कृष्ण भक्त बन गया। तो आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत शर्भ। जब इससे व्यक्ति ऊपर के भाग में उठता है और विशुद्ध भक्ति मार्ग में जब वो प्रवेश करता है, देखिए पहले नास्तिक, फिर देवी देवताओं का पूजक, उसके बाद सकाम कर्मी, सुकृतिवान है ना। अब वो जीव का प्रमोशन हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, अपग्रेडेशन, ऊपर उठ रहा है। अब वो भक्ति मार्ग में आया, और भक्ति मार्ग में हम जब बारंबार बारंबार जब हम ये कहते हैं मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है। क्योंकि हो सकता है कि किसी जन्म में मैं मठाधीश बन जाऊं, महामंडलेश्वर 1108 श्री श्री गोस्वामी जन्माष्टमी दास जी महंत श्री, ऐसे में बन जाऊं तो हो सकता है कि मैं ये कह दूं कि न सुंदरीम, पर मैं ये तो कह सकता हूं हां जन्म हां धनम हां कविताम वा जगदीश काम है, मेरे शिष्य शिष्याएं मेरी स्तुतियां करनी चाहिए। हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है, इसी जन्म में भी पॉसिबल है। मिलने तो दो, मिला नहीं इसलिए फकीर घूम रहा है अकिंचन बन के, गौड़ी अकिंचन वैष्णव, मिला नहीं इसलिए, इसलिए जन्माष्टमी दास गौड़ी अकिंचन वैष्णव है। बहुत सारे शिष्य शिष्या और धन मिल जाए तो तब पता चलेगा कि हाँ धनम की ना धनम, हाँ जन्म की ना धनम ना जन्म, हाँ सुंदरीम की ना सुंदरीम, हाँ कविताम के ना कविताम, तो मिला नहीं इसलिए। कोई साइकिल पे घूमता है और बोलता है बड़ा वैरागी साधु है, वो मर्सिडीज में नहीं घूमता है, तो है नहीं मर्सिडीज या स्कोडा या BMW है नहीं उसके पास, इसलिए बेचारा वैरागी है। वैरागी हमने देखा था अम्बरीश महाराज दास, अल्फ्रेड फोर्ड, जब द्वारिका से हम लोग राजकोट मंदिर का भूमि पूजन के लिए गए थे, तो अल्फ्रेड फोर्ड अम्बरीश महाराज दास प्रभुपाद के शिष्य, यदि वो चाहते तो अपना चार्टर्ड हेलीकॉप्टर करके वो आ सकते थे द्वारिका से राजकोट। वो हमारे पास उस रेलवे के टूटे हुए बकड़े बाकड़े पे, लाकड़े लकड़ी के बकड़े पे बैठे थे, खटमल काटते थे। हम लोग सब ऑर्डिनरी कंपार्टमेंट में गए और उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला था ऐसे केबिन वाला। तो हम लोग 2-3 भक्त लोग दौड़ के गए उनकी सेवा के लिए, प्रभुपाद शिष्य हैं। तो जैसे ही वो केबिन खुला, वो सब कागज माचिस की तीलियां मूंगफली के छिलके सब पड़े थे। लेकिन वो अल्फ्रेड फोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फोर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी, वो हमारे साथ में रेलवे के लकड़ी के बाकड़े पे बैठ के जहाँ खटमल काटते थे उसी में गए, उसी में वापस आए। वो चाहते तो अपना चार्टर हेलीकॉप्टर कर सकते थे भारत के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, पर उनको कहा जाएगा वैराग्य युक्त वैराग्य, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम। नहीं तो हमारे गोरेगांव के कृष्ण माई के यहाँ आते हैं, एक साधु का फोटो लगता है, फलाहारी बाबा भागवत सप्ताह फलाहारी बाबा, तो मैंने अद्भुत चरण से कहा अगली बार मेरी फोटो लगा वनवासी बाबा, मैं वन में रहता हूं वनवासी बाबा। अरे तू फलाहारी है कि वनवासी है, क्या करना है? कृष्ण कथा कितनी जानता है? जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए, तो कृष्ण को कितना जानता है कि नहीं? तू फल खा के जीता है कि क्या खा के जीते, किसी को क्या करना है? व्हाई यू आर मेकिंग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, मेरी भी फोटो लगा वनवासी बाबा आ रहे हैं। तो अभी जब इससे ऊपर उठते हैं हम, जब बारंबार ये कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वर, तब जाकर के हमारा ब्रज में साधन सिद्ध भक्तों के रूप में जन्म होता है। ठाकुर जी के साथ नित्य सिद्ध तो आते ही है नित्य लीला प्रवेश कर, नित्य लीला को और विस्तारित और ऐश्वर्यमय करने के लिए, परंतु हम जैसे जीवों ने जो यहां साधन कर रहे हैं वो उनके इस पास जाते हैं और हमारा ब्रज में जन्म होता है इन जीवों का। लेकिन पूर्व का आदि अनादि काल के जो चित्त में संस्कार पड़े हैं उसके कारण वो जो परंपराएं हैं उसको अनुसरण करना चाहते हैं। कितने भक्तों अभी तक, सच बताना, कितने भक्तों लोग अभी तक कुल देवी पूजा करते हैं? सच बताना, कुल देवी नवरात्रि में या कोई और दिनों में कुल देवी? मैं तो भक्तों के कंकोत्री में, वेडिंग कार्ड में देखता हूं, लग्न पत्रिका में, ब्रह्माणी माता प्रसन्न, खोड़ियार मां प्रसन्न, और गणेशाय नमः, फिर हरे कृष्णा, फिर प्रभुपाद, फिर चैत्र। खिचड़ी मत करो, भेलपुड़ी मत बनाओ, एक बात पे रहो। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, प्लीज अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा, मुझे पता है इज्जत चली जाएगी। कुल देवी राधा रानी, कुल देवता कृष्णा गिरधारी, और कुछ है ये नहीं। तो जब हम इन चीजों से ऊपर उठते, हमारे आदि अनादि काल के संस्कारों से हम वो पारंपरिक पालन करना चाहते हैं, तो तब आध्यात्मिक हस्तक्षेप, ए सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल इंटरफेरेंस, आध्यात्मिक भागवत हस्तक्षेप, दिव्य हस्तक्षेप भगवान करते हैं। और वो कहते हैं इंद्र पूजा नहीं, मैं खड़ा हूं, मेरी पूजा करो। इसलिए वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कर्मों के फलों का, कि यदि इंद्र भगवान हंसी हंसी में, तात्पर्य में लास्ट में लिखते हैं कि भगवान हंसी हंसी में जो नास्तिक तर्क वितर्क कर रहे हैं उसको हमें गंभीरता से नहीं ले लेना चाहिए कि हाँ ऐसा है ऐसा है। ऐसे करके देवी देवताओं को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अगर हम कहीं जा रहे हरे कृष्ण के भक्त लोग, कोई गणपति का मंदिर आ गया तो हरे कृष्ण, आप जानते हैं गणपति कौन है, गणपति का स्थान क्या है? यत्पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समयेस गणाधिराज विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी अहर्निश नरसिंह देव के अपने कुंभों पर चरण को धारण करके रखते हैं, इस सेवा के कारण गणपति जी को तीनों लोगों के विघ्नहर्ता बनने का वरदान प्राप्त है। हम लोग तो अभी बाहर निकलेंगे तो आधे से ज्यादा शर्ट पैंट पहन लेंगे, हम कहां भगवान को उतने शरणागत है। शर्ट पैंट पहनना कोई पाप नहीं है, एक बात बता रहा हूं, हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, उतने पूर्ण नियुक्त नहीं है भगवान की सेवा में। तो यत्पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ, अपने कुंभों पर नरसिंह देव के उन चरण कमलों को धारण करके रखते हैं, तो ये नरसिंह देव के दूत हैं। तो गणपति का मंदिर मिला तो प्रणाम कर दो ना, ओम गं गणपते नमः, या वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, ऐसा बोल देने से क्या हरे कृष्ण कम हो जाएगा? पूजनीय सभी हैं, भजनीय एकमात्र गोविंद हैं, इस सिद्धांत को जान लेना चाहिए। पूजनीय माता पिता हैं, पूजनीय धरती हैं, पूजनीय राजा हैं, पूजनीय राजमाता हैं, पूजनीय गुरु हैं, पूजनीय गुरु माता हैं, पूजनीय बहुत सारे लोग हैं, भजनीय एकमात्र गोविंद है। तो जब हम एकमात्र गोविंद भजनीय हो जाता है तो भगवान हस्तक्षेप करते हैं, इंद्र पूजा बंद करो, तब भगवान हमारी सुनते हैं, तब हमें पाप करने से रोकते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से हाथ पकड़ के रोकते हैं। जो हम जन्मों जन्म प्रार्थना करते हैं भगवान पाप होने क्यों देते हैं, अब वो नहीं होने देंगे, क्योंकि अब हम चौथे स्टेज में पहुंच गए, अब हम पूर्णतया उनको समर्पित है, शरणागत हैं, तब हमारी इंद्रियां और मन कभी नहीं जाएगी, और जाएगी तो कृष्ण ऐसे बीच में आकर खड़े हो जाएंगे, इंद्र पूजा नहीं, वो तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, अनेक तर्क प्रस्तुत करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, पंढरपुर में खड़े ना विट्ठल जी, ऐसे नहीं करने देंगे, और फिर अनेक तर्क प्रस्तुत करें। तो ये हो गया आधा तात्पर्य। अब आधा तात्पर्य यह है, 5 मिनट, आधा तात्पर्य है कि इस अध्याय का नाम है गोवर्धन पूजा। तो भगवान श्री कृष्ण, जैसे हमने एक शिक्षा ली के दिव्य हस्तक्षेप, दैवी हस्तक्षेप, तो ये हमने शिक्षा सीखा कि कहां से हमारे यात्रा शुरू होती है जीवों की यात्रा कहां से शुरू होती है और जीव किस किस अवस्था से गुजरता है और भगवान अपना डायरेक्ट हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं और कब करते हैं कैसा करते हैं, तो हाथ पकड़ के करते हैं। जब हम पूरे पूरे ब्रजवासी हो जाते हैं और ब्रजवासी होने का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत नाम के ग्रंथ में बताया है 9वें 10वें 11वें श्लोक में कि जहां जहां राधा कृष्ण की श्री अर्चा विग्रह हैं वो ब्रज हैं, आप उनको शरणागत रहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, आप ब्रजवासी हैं। प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा दी। तो इस अध्याय का नाम है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा ही क्यों भगवान श्रेष्ठ करना चाहते हैं, गोवर्धन का अर्थ क्या है? हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि गोवर्धन पूजा हमारे हर एक मंदिरों में मनाते हैं कि जो लोग ब्रज के बाहर हैं या जो गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो भागवत में और पद्म पुराण में ये बताया गया है कि आप गाय के गोबर से गोवर्धन निर्माण करो और उसी को अन्नकूट आदि भोग लगाओ, 56 भोग। देखिए भोग में 3 प्रकार है, हम लोग सब मिक्स कर देते हैं। अन्नकूट भोग अलग होता है, 56 भोग अलग होता है, अटका भोग अलग होता है। उसके लिए आपको नाथद्वारा मंडल से प्रकाशित ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। अटका भोग किसे कहते हैं, 56 भोग किसे कहते हैं, अन्नकूट दर्शन या अन्नकूट भोग किसे कहते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, अन्नकूट 56 भोग कुछ भी। 56 भोग में भी एक प्रणाली है, एक सिस्टम है कि सब्जियां कहाँ रखनी है, फल कहाँ रखना है, मिठाई कहाँ रखनी है, रस कहाँ। हमारे भक्त लोग दौड़ते इधर जल्दी। पानी के कितने कटोरे होने चाहिए। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में बताया गया है कि जब अन्नकूट करें हम, गिरिराज उत्सव करें, तो कितने पानी के कलश रखने चाहिए, कितने कलश रखने चाहिए। हम लोग 108 मनके में माला है, माला की मनके में 108, इसलिए 108। भक्त बड़े सरल होते हैं, 108 पास, 81 गर्ग संहिता में लिखा है गिरिराज खंड में, तो लेकिन 108 पास। भक्त जो कहे पास, भगवान सब यस कह देते हैं, भक्त ने कहा यस। तो गोवर्धन पूजा क्यों? तो देखिए गोवर्धन पूजा जो है ये गोबर की पूजा है। गोबर गायनू छान, गुजराती में कहते हैं गायनू छान। गोवर्धन पूजा अर्थात गाय के गोबर की पूजा का उत्सव है। गोपाल अष्टमी गोवालों की पूजा है। गोपाल जो लोग गौ पालन करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उन व्यक्ति विशेष की पूजा का दिन है। और गाय की पूजा का दिन कौन सा है? गोपाल अष्टमी, गोवर्धन पूजा नहीं। हाँ प्रभु क्या बोल रहे हैं? दीपावली नहीं, थोड़ा सा नजदीक है तो दीपावली का पर्व। गुजरातियों ने खबर नहीं, अपने गाय की पूजा कई दिवसे करिए, कई दिवसे करिए, गाय ने गेरू लगाड़ी, गाय ना शरीर पर छापा मारिए, ने सिंगड़ा में तेल का घी लगाड़िए, कई दिवसे करिए। सिंह में घी या तेल लगाते हैं और गाय के शरीर पर गेरू से ऐसे छापा मारते हैं, वो किस दिन करते हैं? हाँ किस दिन करते हैं? हाँ नवरात्रि के बाद, दो नवरात्रि, वो तो चैत्री नवरात्रि है और एक शारदीय नवरात्रि है, नवरात्रि का कोई संबंध नहीं है। हाँ जो नवरात्रि और दीपावली से संबंधित है, नहीं उस दिन नहीं, आप थोड़े दूर है, गोपाष्टमी के बाद नहीं। दीपावली शुरू कब से होती है? एकादशी से। दीपावली शरद ऋतु में अश्विन कृष्ण एकादशी से मनाते दीपावली। तो दूसरे दिन जो द्वादशी होती है उस द्वादशी को कहते हैं वत्स द्वादशी, संस्कृत नाम है वत्स द्वादशी, हिंदी में कहते हैं बच्छ बारस, बछड़े की बारस, और गुजराती में मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं वाघ बारस, मुझे नहीं पता वो वाघ बारस क्यों कहते हैं गुजराती में, मुझे नहीं पता। આપણે કહીએ ને વાઘબારસે પૂજા ન કરીએ ગાયની, આપણે ગાયના સિંગડામાં તેલ લગાડે, ઘી લગાડે અને ગેરુના છાપા મારીએ ને, ક્યારે કરીએ વાઘબારસ? તો જો વત્સ દ્વાદશી હે વો ગૌ કી પૂજા હૈ, ગોવર્ધન પૂજા કા દિન હૈ ગોબર કી પૂજા, ઓર ગોપાલ અષ્ટમી જો હૈ વો ગોપાલો કી પૂજા હૈ. તો યે જો ગોબર શબ્દ હૈ વો ગોબર નહીં હૈ, યે કેવલ યુપી બિહાર બંગાલ ઓર ઉડીસા કે લોગ વ કો બ બોલતે હૈ, અધિકાંશ વ કો બ બોલતે હૈ. વાસ્તવ મેં સંસ્કૃત શબ્દ હૈ ગોવર, ગોવર શબ્દ હૈ, ગોબર શબ્દ નહીં હૈ. યુપી બિહાર બંગાલ ઓર ઉડીસા કે લોગ વ કો બ ઓર ય કો જ એસે બોલતે, જમુના હૈ ના, જશોદા, ઓર ગોવર હૈ સંસ્કૃત શબ્દ હૈ ગોવર, અર્થાત ગાય કે દ્વારા પ્રદાન કિયા હુઆ વર, ગોવર. અભી ગોબર કે સિર્ફ ઓર સિર્ફ ગોબર કે વિષય મેં બોલુંગા તો 6 ઘંટા ચાહિયે કમ સે કમ, મુજે 5 મિનિટ મેં જીતના હો સકે. તો યે જો ગાય કા ગોબર હૈ, યે ગાય કી તરફ સે પ્રદાન કિયા હુઆ વરદાન હૈ યે, ઇસીલિયે કહા ગોવર્ધન, જીતના હો સકે ગોબર કા વર્ધન કરો, ગોબર કી પૂજા કરો. આમ તોર પર હમારે ભારત વર્ષ મેં, હમારે ભારત દેશ મેં દુઃખ કી બાત હૈ કે જો સોચતા હૈ જો પઢા લિખા નહીં હૈ, જો સ્કૂલ નહીં ગયા, અંગૂઠા છાપે, અનાડી હૈ, મૂર્ખ હૈ, વો ગાય કો ચરાને જાતા હૈ, ગાય કો પાલન કરતા હૈ, ગાય કો નહેલાતા હૈ, ગોબર ઉઠાતા હૈ. બોલે યે છિલકડિયા બા, યે તો છિલકડિયા બા, યે ગોબરાહા બા, હે ના ભોજપુરી મેં કહેતે ના, યે તો ગોબરાહા બા, યે છિલકડિયા બા, યે ભોજપુરી શબ્દ હૈ કે યે છિલકડિયા હૈ, મતલબ ગોબર ઉઠાતા હૈ, ગોબરાહા મતલબ યે દિન રાત ગોબર ઉઠાતા હૈ, ઇસકો અકલ નહીં હૈ. લેકિન સંસાર કા એસા કોઈ રોગ નહીં હૈ જો ગોબર મિટા નહીં સકે, ઇસ સંસાર મેં એસા કોઈ રોગ નહીં હૈ જો ગોબર ઉસકો મિટા ના સકે. અગર કિસી કો બ્લડ પ્રેશર હૈ, ડાયાબિટીસ હૈ, કોલેસ્ટ્રોલ હૈ, હાર્ટ એટેક આ ચુકે હૈ, અસ્થમા એટેક હો ચુકા હૈ, પેરાલિસિસ એટેક હો ચુકા હૈ, એઇડ્સ ભી હૈ યા કેન્સર ભી હૈ, ઇતને સારે રોગ, ડોક્ટર તુરંત હાથ ઝકઝોડ દેગા, કુછ નહીં, જા મર. એસા વ્યક્તિ અગર અપને આપ કો ગલે તક ગોબર કે ઢેર મેં 45 મિનિટ તક રોજ રખે ઓર 45 દિનો તક રોજ રખે, વો બિલકુલ નિરોગી હો જાયેગા, ઉસકે નાખુન મેં ભી રોગ નહીં રહેગા. યે હૈ ગોબર કા પાવર. દૂસરી એક બાત બતાતા હું, વૈજ્ઞાનિક બાત હૈ યે, જો ગોવર્ધન પૂજા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને એસે હી નહીં બતાયા હૈ. અભી વિશ્વ કે કઈ દેશ પરમાણુ બમ બનાતે હૈ, એટોમિક બોમ્બ, ઉસ પરમાણુ બમ કા જો કચરા હૈ, જો બમ બનાતે બનાતે જો વેસ્ટેજ નિકલતા હૈ, કચરા, જો કચરા નિકલતા હૈ, વો કચરા કો એક યા ડેઢ ફીટ મોટી દીવાર વાલી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ટંકીઓ મેં ડાલતે હૈ, જિસકી દીવાર એક ફીટ હૈ યા ડેઢ ફીટ હૈ, ઇતની ચૌડી દીવાર હૈ, એસી ટંકી બનાતે હૈ, ઓર ઉસમે વો પરમાણુ બમ કા કચરા ડાલ કે હજાર ડેઢ હજાર ફીટ હર દેશ કી સરકાર ઉસકો જમીન મે નીચે ગાડતી હૈ, ઓર ઉસકે સાથ મે એક સેન્સર લગાતે હૈ, ઓર ફિર કમ્પ્યુટર પે રોજ દેખતે હૈ, ફિર ભી કુછ વર્ષો કે બાદ વો દેખતે હૈ કે વો ટાંકી જો હૈ, વો ટંકી જો હૈ, લીકેજ હો ગઈ, ઓર વો પરમાણુ કા કચરા જો હૈ લિક્વિડ ફોર્મ મે, પ્રવાહી રૂપ મે બહાર નિકલતા, ઓર ઉન લોગો કો ચિંતા હૈ કે યે પરમાણુ કા કચરા જો લિક્વિડ હૈ વો કિસી નદી સમુદ્ર નાલે તાલાબ મેં ચલા ગયા તો કિતની બડી જીવ સૃષ્ટિ કા સંગાર હો જાયેગા. લેકિન ઉપાય નહીં, કોઈ ઉપાય નહીં. તો યદિ પરમાણુ બમ ફટ જાય તો કિતના બડા નરસંહાર યા જીવ સંહાર, જીવ સૃષ્ટિ કા સંહાર હો જાયેગા. તો જાનતે કૌન બચેગા ઉસમે? કેવલ વહી લોગ બચેંગે જિનકી ઘર કી દીવારો પર, ખિડકીઓ પર, દરવાજો પર ગાય કા ગોબર લગા હોગા. ઉસ પરમાણુ કે કચરે કો છોડો, પરમાણુ બમ ફટને કે બાદ જો રિએક્શન આયેગા, આલ્ફા બીટા ગામા જો રેઝ નિકલેંગે ઉસમે સે, જો કિરણોત્સર્ગી રેઝ, ભયાવહ ધમાકેદાર જો રેઝ નિકલેંગે, વો ગોબર કો ભેદ નહીં પાતે હૈ. યે નેશનલ એરોનોટિક સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન નાસા કે વૈજ્ઞાનિક કેન્દ્ર ને ખોજા હૈ, कि गाय के गोबर में इतनी शक्ति है कि परमाणु बम के किरण उसको पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए है गोवर्धन पूजा। अभी कुछ 3-4 वर्ष हुआ, जापान के फुकुशिमा एटॉमिक प्लांट में कुछ धमाका हो गया, वो प्लांट में भयानक आग लग गई। किसी कीमत पे फ्रांस के, जर्मनी के, रशिया के, अमेरिका के बड़े बड़े इंजीनियर आए, वो उस आग को बुझा नहीं पाए किसी कीमत पर। फिर किसी ने उनको सजेशन दिया तो भारत और पाकिस्तान से गाय के, भैंस के गोबर के कंटेनर के कंटेनर गए और उन्होंने उस एटॉमिक फुकुशिमा एटॉमिक प्लांट में गोबर ठाला जोर जोर से और वो आग शमन हो गई। आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर में, ये है गोवर्धन, गाय का वरदान, गोवर्धन, गोवर्धन पूजा। तो ये अनाड़ियों का काम नहीं है गोबर उठाना, ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। जो गोबर उठाता है वो बड़ा बुद्धिमान है। आप, मैं, हम सब भक्त लोग 30 साल से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करें, 50 साल हरे कृष्ण करें, लेकिन यहां 500 लोग आएंगे और कोई आएगी साउथ से, अम्मा इतना बड़ा कुमकुम का टीला करके बोले इसका कुंडलिनी जागृत है, सब जवाब देती है, 5000 लोग दौड़ेंगे। हमारा कुंडलिनी जागृत नहीं होता है, कुंडलिनी जागृत करना है गाय का गोबर उठाओ। मेरे पास श्रीनाथजी धाम में कोई भी आता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, सब लोग आते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी आते हैं, कहां कहां से सुन के गाय के विषय में। पहले बोलता हूं जा गौशाला में गोबर उठा, मेरी कंसल्टेंसी चार्ज है, मेरा फीस है गाय का गोबर उठा। बिजनेसमैन हो कोई भी हो, गाय का गोबर उठा। बड़े बड़े मंत्री, संतरी, तंत्री भी आते, गाय का गोबर उठा, बाद में मुझसे बात कर, पहले गाय का गोबर उठा जा। गाय का गोबर उठाना बहुत पुण्य का काम है, बहुत बड़े वैज्ञानिक का काम है, बहुत बड़े भाग्यवान का काम है गाय का गोबर उठाना। मैंने पहले कहा 6 घंटा लगेगा, 6 मिनट में खत्म करूंगा, डरिए मत। यह है गोवर्धन पूजा। वैसे तो गोवर्धन हिमालय का पुत्र है और पुलित्ज़र ऋषि उनको लेके जा रहे थे काशी में स्थापित करने के लिए, क्योंकि गोवर्धन की जो महिमा उन्होंने पढ़ी, ये सब कुछ है गिरिराज खंड में, गर्ग संहिता में। तो गोवर्धन के सौंदर्य से पुलित्ज़र ऋषि, रावण के परदादा रावण के दादा पुलित्ज़र ऋषि इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने हिमालय से मांग लिया दक्षिणा में। हिमालय डर गया, बोले ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे तो ब्राह्मण श्राप देगा, तो बोले तेरा पुत्र चाहिए गोवर्धन। और पिता ने, हिमालय ने आज्ञा कर दी गोवर्धन से, पुत्र पुलित्ज़र ऋषि के साथ जा, काशी में स्थापित हो जा। तो पुत्र ने कहा ठीक है, मोकू तो भैया ब्रज में जानो है, मोकू तो भैया ब्रज में ही रहनो है, बाल कन्हैया की लीला को निहारनो है, भैया देखनो है मोकू तो, भूत भड़ंगा भूम भूम भोले भम भम भोले, तो कहां जाएंगे वहां काशी में। उगाते ना शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के भभूति लगाए के, बोले वहां कहां काशी में जाएंगे। बोले मोकू तो भैया ब्रज को ना छोड़नो है, मोकू तो ब्रज में जानो है भैया। तो उन्होंने, गिरिराज ने शर्त रखी पुलित्ज़र ऋषि से कि जब आप मुझे एक बार धरती पर रख दोगे फिर मैं वहां से जाऊंगा नहीं। तो पुलित्ज़र ऋषि हनुमान की तरह उड़े गोवर्धन को लेकर काशी की ओर। पर जब गोवर्धन ने देखा कि अब तो ब्रजभूमि आ गई, तो गोवर्धन ने अपना वजन इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया कि पुलित्ज़र ऋषि को परिश्रम आ गया और उनको छुसु लग गई, बहुत वजन बढ़ाया। हाँ, व्यक्ति को होता है जब कोई भय हो जाए तो टट्टी पिशाब हो जाती है डर के मारे, या जब बहुत परिश्रम होता है तो भी हो जाती है, सुसु लग जाती है। तो पुलित्ज़र ऋषि को सुसु लग गई और इतना वजन बढ़ाया गोवर्धन ने अपना, तो उनको सुसु आ गई। तो बोला एक मिनट में सुसु जाके आता हूं, अब रहा नहीं जाएगा। तो उन्होंने रख दिया वहां पर ब्रज में गोवर्धन को और वो सुसु जाके आया। फिर गोवर्धन ने कहा अब नहीं आऊंगा, शर्त याद करिए हिमालय में क्या प्रण लिया था। तो पुलित्ज़र ऋषि ने ध्यान में देखा तो समझ गए, उन्होंने गोवर्धन को श्राप दिया कि आज के बाद तू प्रतिदिन तिल तिल लुप्त हो जाएगा। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, हमें देखिए कई जगह गोवर्धन लुप्त हो गया, गोवर्धन दिखते नहीं है गिरिराज महाराज, इसलिए गोवर्धन लुप्त होते जाता है पुलित्ज़र ऋषि के श्राप से। लेकिन जब तक है अधिक से अधिक दर्शन करें। तो गोवर्धन की एक महिमा ये भी है, और साक्षात श्री कृष्ण आगे के अध्यायों में भी आपको दिखाएंगे कि गोवर्धन क्या है, गाय का गोबर क्या है। 33 करोड़ देवताओं का वास गाय के विभिन्न अंगों में है, भगवान धन्वंतरी का निवास गाय के दाहिने कान में है। जो बाहर खड़ी रहती है वो गीर गाय है, शुद्ध देशी गुजराती गाय, शुद्ध गाय है वो। जर्सी गाय, होलेस्टीन गाय, एचएफ ह्यूस्टन फर्जन, अभी नई फैक्ट्री में गाय पैदा होती है एचएफ ह्यूस्टन फर्जन काओ, या इसका क्रॉस ब्रीड, ये नहीं चलेगा। शुद्ध देशी भारतीय गोवंश, चाहे वो महाराष्ट्र का खिल्लारी हो, गुजरात की कांकरेज या गीर हो, या राजस्थान की थरपारकर हो, या सिंध पंजाब और हरियाणा की शाहीवाल गाय हो, कोई भी गाय हो, ये शुद्ध भारतीय गोवंश, उसके दाहिने कान में भगवान धन्वंतरी का निवास है। यदि आपको जो गाय पालते हैं उसके लिए ये बात है, जिनके घर के आंगन में गाय है उनके लिए, यदि वो कह दे कि मुझे सिर दर्द होता है, मुझे पेट दर्द होता है, तो गाय जंगल में ऐसी जड़ी बूटी चर के आएगी और जो गौमूत्र करेगी वो आपकी दवा है, वो आपकी दवा की जड़ी बूटी चर के आती है। उसको ये मत बोलिए मुझे स्पॉन्डालिसिस है, मुझे डायबिटीज है, वो नहीं समझते भगवान धन्वंतरी। आप गाय के कान में बोलिए, और हमने ये व्यक्तिगत अनुभव किया है, गाय के दाहिने कान में भगवान धन्वंतरी का वास है। तो ऐसे विभिन्न अंगों में विभिन्न देवता है, पर जिसके पीछे सारी दुनिया दिन रात पागल होकर दौड़ती है वो कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का वास कहां है? गाय के शरीर में, पूछड़ा में नहीं, गाय के शरीर के बाहर जो गोबर गिरा है उसमें लक्ष्मी का वास है। तो उसको संशोधन करना चाहिए कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, अर्थात ये गोबर से लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो? इकोनॉमिक रीजन, साइंटिफिक देखा, एक साइंटिफिक व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण देखिए, गोवर्धन। यदि आप खेत में यूरिया, सल्फर, डाइकेम ये सब नहीं डालते हैं और गाय का गोबर डालते हैं खेती करने के लिए, मेरे पास 10 से अधिक बिंदु है जो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ट्रैक्टर से और केमिकल से जो खेती में उपज होगी उससे 10 गुना ज्यादा बैल से और गाय के गोबर से उपज होगी, मैं सिद्ध कर सकता हूं। अभी आज नहीं, आज पर अभी नहीं, यहां नहीं, बाहर। एक ही छोटा सा पॉइंट बताना है कि जो लोग अपनी खेती में गोबर डालते हैं, तो मानो राजस्थान, कच्छ के रेगिस्तान आदि में बारिश कम होती है, तो जहां बारिश कम होती है वहां अगर खेती में यूरिया, सल्फर, डाइकेम ये सब डालने के बजाय अगर गाय का गोबर डाला है, तो कम पानी से भी अन्न उपज होता है, बहुत अच्छा उपज होता है, और वो अन्न के बीज जलते नहीं है। और जहां अतिवृष्टि होती है, ये भी हमने प्रैक्टिकल देखा और आज भी मैं आपको दिखा सकता हूं, अभी इसी वक्त श्रीनाथ धाम जाके दिखा सकता हूं, कि जहां बहुत पानी और कीचड़ जमा होता है वहां भी अगर खेत में गाय का गोबर डाला है तो भी वो खेती या बीज का नाश नहीं होता। जबकि आज बड़े बड़े कृषि विज्ञान संशोधन केंद्र में बताया जाता है कि बीज नष्ट हो जाएगा अगर पर्याप्त पानी नहीं होगा, बीज नष्ट हो जाएगा यदि अधिक पानी बरसेगा, तो इसके लिए कैनल बनाओ, उसके लिए पाइपलाइन करो, इसके लिए वो क्या बोलते हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिकाना करो। इतने सिंपल बात नहीं जानते हैं कि गोबर डाल दो बस, क्योंकि वो गाय का वरदान है, गोवर। इसलिए श्री कृष्ण इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, इतने बड़े समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, कृष्ण सब कुछ है। इसलिए वो गोवर्धन की पूजा, देवी देवताओं की पूजा हटाने से करते हैं, ताकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जैसे हमने शुरू से सीखा कि नास्तिक, फिर आस्तिक, देवी देवता पूजक, फिर भक्त, भक्त की भी श्रेणियां, तो इन श्रेणी के अनुसार ही कृष्ण भी गोवर्धन पूजा की अलग अलग तर्कों द्वारा, ये पूरा अगर अध्याय पढ़ेंगे गोवर्धन पूजा का, तो अलग अलग दृष्टिकोण से हमें कृष्ण सिखाते हैं कि गोवर्धन क्या है, गाय क्या है, गाय का गोबर क्या है, गोवर्धन क्या है, पर्वत क्या है, पर्वत में स्वयं नारायण क्या है, वो सब हमें सिखाते हैं। लेकिन मर्यादित समय में कितनी बात है, इसलिए हरे कृष्ण। अंत में एक ही बात कहता हूं, जब कभी हमारे मंदिर में उत्सव हो तो ब्रह्मचारियों को छोड़ के बाकी सब गृहस्थी भक्तों को और माताओं को बहुत सज धज के आना चाहिए, बहुत सज धज के। ऐसा नहीं कि हम अकिंचन सादा सादा भक्त बन के आए, नहीं। आचार्य चरण श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं, गोपी मधुरा, लीला मधुरा, युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टीर मधुरा सृष्टीर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा हाँ संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। वल्लभाचार्य जी ने जो देखा वही लिखा। तो जब गोवर्धन पूजा हुई तो कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार गोप बालकों गोर और ग्वाले अपने आप को सजा धजा के निकले। उनकी पगड़ियां उनके उनके वस्त्र उनके श्रृंगार यहां तक कि उन्होंने लाठियों को भी सजाया। गोपा मधुरा गायों को सजाया गावो मधुरा यष्टीर मधुरा यष्टी माने लकड़ी तो लकड़ियों को भी सोने की जरी की पट्टी लगाई और सोने के घुंघरू लगाए छम छम आवाज आते हैं। चेन भी सोने की जिसमें कहीं कहीं डायमंड्स लगे हुए हैं या मोती लगा हुआ है। तो यष्टीर मधुरा सृष्टीर मधुरा मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम और ऐसे जो कृष्ण हैं वो तो सारे के सारे मधुराधिपति द मोस्ट स्वीटेस्ट मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपियां भी सज धज के गई। पढ़िए अभी आएगा भागवतम के इसी स्कंद में इन्हीं अध्यायों में आएगा। तो ऐसा नहीं हमें मीराबाई जैसा ऐसा सफेद बांक ऐसा पहन के ऐसे ये एकदम सादा सा। अरे भाई हम सब आप सुहागन माता हैं मीराबाई मत बन जाओ। मीराबाई सुहागन नहीं थी इसलिए आप सज धज के जाओ। भक्त लोगों को क्या ऐसे बड़ी बड़ी पट्टियों वाला पहनना चाहिए यार बॉर्डर गोल्डन हमारे ठाकुर जी का उत्सव। फिर भले बाकी 365 दिन फटा हुआ धोती पहनो अकिंचन ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है यार बड़ी बड़ी बॉर्डर पहननी चाहिए। 1997 में राधा पार्थ सारथी मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश में जब उद्घाटन था तो मैंने देखा अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे रामनवमी के दिन और मैं वहां उस दिन राम जी की सेवा में था। तो उद्घाटन के दिन मैंने देखा वाजपेयी जी ने ये पैर से लेके 1.25 फुट तक के ऐसे पट्टा वाली धोती पहनी थी वाजपेयी जी ने। लेकिन हमारा गुरु भाई वहां का वाइस प्रेसिडेंट महामंत्र प्रभु उसने घुटने तक के पट्टे वाली पहनी थी। वाजपेयी को भी हरा दिया। बोले आज पार्थ सारथी का प्राण प्रतिष्ठा है। बोला वाह मजा आ गया प्रधानमंत्री को भी हरा दिया उसने यहां तक का पट्टा पहना तो महामंत्र का घुटने तक का पट्टा था ऐसे वाला ये उसकी धोती। बोला ऐसे रहना चाहिए भक्तों को। ओके है क्या जो पेंट शर्ट पहन के आएगा उसको उस दिन 1,000 रुपया फाइन। जो पेंट शर्ट में आएगा भक्त लोग अगर पेंट शर्ट में आएगा तो उसको 1,000 फाइन करो उस दिन। चाहे रेमंड का ही पेंट शर्ट क्यों ना पहन के आया हो एकदम रेमंड वुलन रेमंड है ना वो तो क्या रेमंड वाले बोलते हैं क्या परफेक्ट मैन वो कुछ नहीं चलेगा। पगड़ी वगड़ी पहनो जरी लगाओ हीरे लगाओ डायमंड लगाओ। हरे कृष्ण यदि कोई गलती त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिए। वंशा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय।